ओम शांति। आज सवेरे से आप सभी जैसे ही सवेरे आप गीता दीदी जी से सुन रहे थे तब से ही सुनते ही आ रहे हैं और अभी भी आपको विषय बहुत अच्छा है, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग। तो ऐसे ही आप सुनते रहेंगे एक घंटा तक, आपको बहुत सुंदर बातें हैप्पी लिविंग के लिए सुनाने आए हैं ब्रह्मा कुमार ओंकार चंद, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप हासिल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी बादल चंडीगढ़ से आपने प्राप्त किया, आपने बीटेक किया एनआईटी से कुरुक्षेत्र से और पंजाब यूनिवर्सिटी से यमी किया है। अभी आप एनआईटी के लेक्चरर हैं कुरुक्षेत्र में। आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना वक्तव्य दिया है। 1993 में जब आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए केवल आपकी उम्र 13 वर्ष की थी। अभी आप मीडिया का मीडिया प्रभाग ब्रह्मा कुमारीज के पंजाब के जोनल कोऑर्डिनेटर है। आप पंजाब में हमारा जो राज्य भवन है पंजाब हरियाणा हिमाचल का जोनल ऑफिस राज्य भवन में आप अपनी सेवाएं समर्पित रूप में दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या कैंप्स चलती हैं उसमें आप सदैव अपना सहयोग देती हैं। वर्ष 2006 में जम्मू से चंडीगढ़ तक 1000 किलोमीटर की स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा में भी आपने ये पदयात्रा पूरी तरह से तय की और आप सदैव इन टॉपिक्स पर लेक्चर देते हैं। बहुत सारे विषय हैं, उसमें से कुछ आपके समक्ष रख रही हूँ, माइंड मैनेजमेंट एंड आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हैप्पी लिविंग, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, विन द गेम ऑफ लाइफ, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल, ह्यूमन एंड मॉरल वैल्यूज, राजयोगा मेडिटेशन आदि आदि। हम सब आज के सत्र में हमारे भ्राता ओंकार चंद जी का स्वागत करते हैं और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप ऐसे प्रिंसिपल सुनाइए जो सदैव हमारे समाज सेवक हैप्पी रहेंगे और समाज को हैप्पी रखने के लिए जरूर इन प्रिंसिपल्स को धारण करके जाएंगे। ओंकार चंद जी।
ओम शांति एंड गुड इवनिंग। आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि जब से आप यहां ज्ञान सरोवर में आए हैं तो आपकी खुशी भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ हिलाकर हां कहें। वेरी गुड। जो खुशी हमें यहां आके मिली वो खुशी हमारे जीवन का अंग बन जाए, वो खुशी हमारे जीवन में ऐसे आए कि आने का जाने का नाम ना ले, उस चीज के ऊपर आज का ये इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर रखा गया है, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग। कैसे हम अपनी जिंदगी में खुशियों की बहार लाएं। पिछले साल दिसंबर में मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या आप इस बार क्रिसमस मना रहे हैं? मैंने कहा क्यों नहीं, इनफैक्ट आई सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल एंड नॉट ओनली दैट, व्हेन आई एम हैप्पी एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज सेलिब्रेशन। जब मैं खुश होता हूं तो मेरी जिंदगी का हर पल हर दिन खुशनुमा बन त्योहार बन जाता है, हर पल बहार लाने वाला बन जाता है। ऐसी चीज है खुशी। खुशी के ऊपर जब बात करते हैं तो एक सर्वे रिपोर्ट सामने आती है जो हमें बताती है कि पिछले 50 सालों में इंसान का डिप्रेशन लेवल 10 गुना ज्यादा बढ़ा है, माना उसकी खुशी 10 गुना कम हो गई है। कैसे लाएं खुशी को जीवन में, क्या करना होगा, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ हाईली हैप्पी पीपल, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। कैसे जिंदगी में खुशी आए और आए तो जाने का नाम ना ले। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और गम जैसा कोई रोग नहीं है। खुशी को एक तराजू के पलड़े में रखें तो दूसरे पलड़े में रखने लायक चीज कोई दूसरी नहीं है। ऐसी चीज है खुशी, और खुशी को कोई काले ऐसा खजाना है, ऐसा असीम खजाना है जिसे कोई काले चोर भी नहीं चुरा के ले जा सकते। अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने का भी क्या फायदा। अगर चेहरे में खुशी नहीं है तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उसका भी क्या फायदा, क्योंकि हमारी वास्तविक पर्सनैलिटी है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस आजकल इतना कॉमन चीज हो गई है कि लोग तो अपने बच्चों के नाम भी खुशी रखते हैं, कई लोग अपने बच्चों का नाम मुस्कान रखते हैं। मैं जलंधर गया, वहां एक से पूछा, कहता जी मेरा नाम हैप्पी सिंह है। मेरा एक रिश्तेदार है, उसका नाम खुशी राम है। अब नाम हो खुशी, लेकिन जैसा नाम हो वैसा काम भी होना चाहिए। नाम हो शांति और हाथ में उठाया हो बेलन तब भी मजा नहीं है। तो खुशी हमारे जीवन में आए और जीवन में ऐसी आए कि हमारे जीवन का हर पल एक त्योहार बन जाए और हैप्पीनेस एक टॉनिक का काम हमारे लिए करे। कहते हैं मुस्कुराहट प्रभु का वरदान है और बिना पैसों की सौगात है जो आप किसी को भी दे सकते हैं और उसकी दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, और वो सारे सुख जो लाखों करोड़ों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुस्कुराहट ऐसी ड्रेस है, ऐसी पोशाक है जो किसी भी मौसम में पहनी जा सकती है। जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर सारी दुनिया मुस्कुराएगी। अगर आप रोएंगे कोई आपके साथ रोने के लिए नहीं आएगा। इसलिए क्यों ना हम हंसें, मुस्कुराएं। और स्माइल के बारे में कहते हैं स्माइल इज ए कर्व दैट मेक मैनी थिंग्स स्ट्रेट। ऐसा कर्व है जो बहुत सी चीजों को सीधा कर देता है और हमें जीरो से हीरो बना देता है। तो क्यों ना मुस्कुराहट स्माइल अपने चेहरे पे लाएं। सर्विस विद स्माइल का आजकल कंसेप्ट चला है, वो हो सकता है लोग नकली स्माइल लाते हों, लेकिन हमें आज ऐसे टिप्स, ऐसे फार्मूला सीखने हैं, ऐसे सिद्धांत जीवन में लाने हैं जिससे स्माइल नेचुरल रूप में हमारे चेहरे पे आए। खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है और जिंदगी के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं कोई। चेहरे की शान है मुस्कान, चेहरे की शान है मुस्कान। मुस्कुराते हैं जो, उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुशियां लुटाइए। यही है आज के लेक्चर का मेन टिप। एक मस्त फकीर पेड़ के नीचे बड़े खुशी मौज से बैठा हुआ था। रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था, उसको सलाह देता है कि आप खुशी मौज से बैठे हो, क्यों ना कोई काम कर लो, कुछ संतरे की टोकरियां रख लो और संतरे बेचना शुरू कर दो। तो फकीर कहता है उससे क्या होगा। अरे भाई तुम संतरे बेचोगे, एक दो सप्ताह के बाद तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम ज्यादा संतरा रख लेना। वो कहता उससे क्या होगा। अरे एक दो महीने में और ज्यादा फायदा होगा, तुम अपनी दुकान खोल लेना। तो फकीर कहता फिर क्या होगा। अरे तुम बात समझते नहीं हो, एक दो साल बाद तुम अपना मकान बना लेना, नौकर रख लेना, नौकर बेचा करेंगे संतरे, तुम आराम से बैठना और तुम नागपुर में संतरे के बगीचे खरीद लेना। फकीर बार बार पूछे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो वो राहगीर कहता फिर तुम मजे से खुशी आराम से बैठ सकोगे। तो फकीर कहता वो तो मैं पहले ही बैठा हूं, इतना सब कुछ करने के बाद भी खुशी और मौज ही मिलती है, वो तो मैं नेचुरल रूप में पहले ही हूं। कहने का मतलब है अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ह्यूमन एंडेवर इज हैप्पीनेस। हम जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं। तो आज अपने से ये प्रश्न पूछिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो मुझे एंड में खुशी देगा। क्या वो मुझे खुशी देगा? हैप्पीनेस है क्या? व्हाट इज एवरलास्टिंग हैप्पीनेस? हैप्पीनेस को बाहर की चीज नहीं है जो बाह्य चीजों से प्राप्त की जाए, बाह्य साधनों से प्राप्त की जाए। ये हमारी नेचुरल नेचर है, ये हमारी मन की श्रेष्ठ स्थिति का नाम है, हमारे मन के सोचने का नाम हैप्पीनेस है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस से नहीं आती। और नो वन इज इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। यू आर द इंचार्ज, आप हैं अपने हैप्पीनेस के इंचार्ज। ऐसे नहीं कि कभी खुशी कभी गम। आपको किसी ने तारीफ कर दी तो आप खुश हैं, आपकी इंसल्ट कर दी तो आप गमों में डूब गए। नहीं, हमें ऐसे तरीका सीखना है कुछ भी हो जाए हमारी हैप्पीनेस ना जाए। दैट इज द एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। एक है टेम्परेरी हैप्पीनेस, एक है परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस जीवन में आए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? क्या वो पल जब आपने अग्नि मिसाइल बनाई? क्या वो घड़ी जब आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? या वो दिन जब आप भारत के राष्ट्रपति बने? या कोई और अचीवमेंट्स वाला दिन? आपको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या जवाब दिया होगा? उसने कहा, जब मैं डीआरडीओ में था तो हमने लाइट वेट कैलिपर्स पोलियो से ग्रस्त मरीजों के लिए बनाए, जो पहले उनको सपोर्ट देने के लिए उनकी लेग्स में कैलिपर्स थे वो 4 kg के थे, लेकिन हमने हल्की मेटल उसमें यूज की जो मिसाइल्स में यूज होती थी, और उससे उनका वेट 400 ग्राम रह गया, जिससे उनको बहुत फायदा हुआ। और वो कैलिपर जब हमने एक बच्चे को पहनाए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी दी। तो हैप्पीनेस इज इन गिविंग नॉट टेकिंग। देने में खुशी है, लेने में बोझ है। हमारी खुशी गायब क्यों होती है? सबसे समझदार कहलाने वाला इंसान, उसे आज खुशी के लाले क्यों पड़ गए हैं? क्यों नहीं हम आज वास्तविक आनंद जीवन का ले रहे हैं? वास्तव में आज हम उन रास्तों पे चल रहे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। साधनों की अंतहीन दौड़ में हम भटक रहे हैं जो हमारी खुशी का गला घोंट रहे हैं। सबसे बड़ा कारण खुशी गायब होने का है हमारी भौतिकवादी सोच। हमारी सोच, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये जो सोच है, हम सोचते हैं मोर द मनी मोर विल बी दी हैप्पीनेस। ये जो गलत सोच है, ये हमारी हैप्पीनेस को गायब कर रही है। हालांकि हैप्पीनेस इज द बिगेस्ट वेल्थ, देर इज नो कनेक्शन बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लेकिन हमने ये गलत बात अपने मन में डाल दी कि ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा साधन, ज्यादा हम सुखी होंगे, ज्यादा हम खुश रह सकेंगे। कागज के नोटों के लिए हम अपना चैन और नींद गंवा रहे हैं, खुशी गंवा रहे हैं, खून सुखा रहे हैं, दौलत शोहरत शान शौकत पाई, मगर खुशी गंवाई तो नतीजे में क्या मिला? इसलिए हर इंसान को इन बेशकीमती मुस्कानों की कीमत को समझना चाहिए, जिसे बेशुमार अशर्फियों से भी नहीं खरीद सकते। मनी इज वन ऑफ द मीन टू अचीव द हैप्पीनेस, इट इज नॉट द एंड। ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका हो सकता है हैप्पीनेस प्राप्त करने का, लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि इसकी गारंटी मनी अगर आपके पास है तब भी देर इज नो गारंटी ऑफ हैप्पीनेस। फॉर द हैप्पीनेस रिचनेस ऑफ माइंड इज नीडिड, नॉट द रिचनेस ऑफ पर्स। आपका बैंक बैलेंस कितना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो संसार के सारे अरबपति लोग सबसे ज्यादा सुखी होते, सबसे ज्यादा खुशनुमा होते। उनको तो दिन में भी नींद आ जानी चाहिए थी, और गरीबों को तो रात को भी नींद नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन होता उल्टा है। अमीरों को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है, गरीब तो ऐसे भी सो जाते हैं। पैसा बहुत कुछ है, पैसे की इंपॉर्टेंस है। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। मनी हमें दे सकता है ब्यूटीफुल हाउस बट नॉट ए हैप्पी होम. मनी कैन गिव अस लॉट ऑफ थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट बट नॉट ट्रू जॉय. इट कैन गिव यू कंफर्टेबल बेड बट नॉट स्लीप, साउंड स्लीप. इट कैन गिव यू एजुकेशन बट नॉट विजडम, नॉट इंटेलिजेंस. इट कैन गिव यू नेम एंड फेम बट नॉट ट्रू रिस्पेक्ट. इट कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हेल्थ केयर बट नॉट द गुड हेल्थ. इट कैन प्रोवाइड यू हाई सिक्योरिटी बट देर विल बी नो गारंटी ऑफ इवन मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी. आपको अपने गनमैन से ही डर लगेगा. अगर पैसे का कनेक्शन हैप्पीनेस से होता तो जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा, आप उनको देखो, सबसे ज्यादा खुशनुमा उनका चेहरा होता है, सबसे ज्यादा मुस्कुराहट स्माइल अगर किसी के चेहरे पे है, छोटे बच्चों के चेहरे पे है. भारत में, बॉम्बे की बात है, झुंगी झोपड़ियों में रहने वाले कुछ बच्चे कड़ाके की ठंड में कागज के ढेरों को कुरेद रहे थे. एक विदेश का पत्रकार फोटोग्राफर आया और उनके फोटो लेने लगा. तो एक भारतवासी जो बड़ा देशभक्त अपने को समझता था, उसने उसका कैमरा छीन लिया और उसको कहता है कि तुम हमारे भारत की गरीबी को अपने देश में जाके नीलाम करना चाहते हो. तो उस पत्रकार ने, उस फोटोग्राफर ने कहा, नहीं, मैं भारत की गरीबी को नहीं, मैं भारत की मासूम मुस्कुराहट को कैमरे में कैद करना चाहता हूं और अपने देश वालों को बता देना चाहता हूं कि भारत में गरीब भी मुस्कुराता है. हमारे देश में तो लोग मुस्कुराना भी भूल गए. दूसरा कारण है हमारी हैप्पीनेस गायब होने का, हमारा भागम भाग का जीवन. हम भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं. सब भाग रहे हैं इसलिए मुझे भी भागना है. ऐसे भागना है कि मेरे पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, बच्चों के लिए समय देने की फुर्सत नहीं है. हम भागे जा रहे हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी बन गए हैं. गाड़ी भी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल भी सुनते हैं, सामने स्क्रीन पर टीवी भी देख रहे होते हैं. ये आज हमारी जिंदगी बन गई है जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो रही है. फास्ट लाइफ फास्ट फूड. पहले वाले सेशन में भी लोग कह रहे थे कि आजकल 2 मिनट दे दीजिए और क्या क्या खा लीजिए, मैगी और बर्गर खा लीजिए. तो लोगों का एक फास्ट फूड और फास्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट डेथ. लोग जल्दी जल्दी मर भी रहे हैं. लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है. भगवान से प्रेयर करते हैं, ओ गॉड गिव मी पेशेंस, मुझे धैर्य दो लेकिन जल्दी दे दो, मेरे पास टाइम नहीं है. तीसरा कारण है आज 21वीं सदी में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. प्रॉब्लम्स इतनी हो गई हैं और हम प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठ जाते हैं. जो प्रॉब्लम आ जाए हम उसकी पीएचडी करने लग जाते हैं. समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समस्याएं तो आएंगी ही. 21वीं सदी में समस्याएं ना आए, चैलेंजेस ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन मुझे समस्याओं का डट के सामना करना है, समस्याओं का बहादुरी से सामना करना है और समस्याओं के प्रति ये एटीट्यूड रखना है कि ये मेरी टेस्ट है, मेरा एग्जाम है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है. एक फर्स्ट क्लास का बच्चा अगर उसका एग्जाम ना हो, वो फर्स्ट क्लास में ही रह जाए, सेकंड क्लास में उसकी प्रमोशन होगी ही नहीं. किसी शायर ने बहुत सुंदर फरमाया है, ए बला आ, बला मतलब मुसीबत प्रॉब्लम, ए बला आ तू मेरे लिए बरकत होगी, तेरे पर्दे में छिपी मेरे रहमान की रहमत होगी. उससे भी सुंदर किसी ने फरमाया है, जिसे वो देना चाहता है, जिसे वो देना चाहता है उसी को अजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है. इसलिए समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है, समस्याएं के प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाने की जरूरत है. किसी ने एक सुंदर बात कही, डोंट से गॉड आई हैव ए बिग प्रॉब्लम बट से ओ प्रॉब्लम आई हैव ए बिग गॉड विद मी. भगवान मेरे साथ है जो प्रॉब्लम से बड़ा है. प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं लगेगी. चौथा कारण है हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, खो जाने का भय. जो भय है वो खुशी का खत्म करता जा रहा है. भय के बारे में कहते हैं कि 90% ऑफ द फियर इज इमेजिनरी, काल्पनिक है. हम ऐसे ही डरे जाते हैं, हम सोचते हैं शायद कल क्या होगा, मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी कार ना चली जाए, मेरा मकान ना चला जाए, मेरे संबंधी ना छोड़ के चले जाएं, कल क्या होगा। लेकिन एक बात याद रख लिए, जो होगा अच्छा ही होगा। ये थॉट आपकी खुशी को कायम रखने में मदद करेगा। पांचवा कारण, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। इतनी इच्छाएं कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। समुद्र के किनारे जितने कण हैं, पहले 7 समुद्र और उसमें भी जितने कण हैं, उससे भी ज्यादा इंसान की इच्छाएं वो पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। बढ़ती जा रही हैं इच्छाएं, बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इच्छाएं क्या रखें? अगर इच्छा रखनी ही है, ऐसी इच्छा रखो अच्छा बनने की, ऐसी इच्छा रखो जिसको पाने के बाद दूसरी कोई इच्छा रह ही ना जाए। वो इच्छा है दूसरों की मदद करने की, वो इच्छा है कुछ महान कार्य करने की, समाज की सेवा करने की, परमात्मा से मिलन मनाने की, मनुष्य से देवता बनने की। अगर वो इच्छा आपने रखी और वो पूरी होगी, सारी संसार की इच्छाएं उसमें समा जाएंगी। संतुष्टता, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहे साधु भी भूखा ना जाए। आखिर हमें चाहिए कितना? हम इच्छाएं लालच बढ़ाते जाते हैं, लेकिन इंसान को जरूरत कितने की है। छठा कारण, ईगो प्रॉब्लम, अभिमान, मैं ऐसा हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक हूं, इतना बड़ा आदमी और इसने मुझे ऐसा कह दिया। जब अभिमान आया तो अभिमान के साथ अपमान की फीलिंग आएगी और आपकी खुशी गायब हो जाएगी। सेंसिटिव नेचर, बहुत से लोगों की छुई मुई की तरह ना सेंसिटिव नेचर है। छुई मुई के पौधे को आप हाथ लगाओ वो क्या करता है, सिकुड़ जाता है। उसी तरह कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ कह दे, कोई थोड़ी सी छोटी सी भी बात कह दे, वो बुरा मान जाते हैं, नाराज होकर बैठ जाते हैं। तो हमें छुई मुई का पौधा नहीं बनना है, हमें बनना है सूरजमुखी का पौधा, जिसको देखकर हर किसी का मन खिल उठ जाए। ऐसे खिलना है जैसे सूरजमुखी खिलता है। लास्ट, रॉन्ग एक्शंस ऑफ पास्ट, जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी हमने पाप कर्म कर रखे हैं, वो हमारी खुशी को गायब करते रहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट 11 हैबिट्स ऑफ हाईली हैप्पी पीपल। इनको जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपके गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करेंगे। ये जो हैप्पी पीपल होते हैं कैसे होते हैं? ये हमारी तरह ही होते हैं, कुछ और किसी और ग्रह के प्राणी होते हैं? धीरे धीरे खुशी ऐसे गायब होती जा रही है कि आने वाली जनरेशन पूछने लगेंगी कि ये जो खुश लोग होते हैं होते कैसे हैं। सरकार को इनकी प्रजाति बचाने के लिए चिड़ियाघर में बंद करना पड़ेगा और संडे के दिन लोग अपने बच्चों को घुमाने ले जाया करेंगे कि देखो बच्चों, ये खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, ये किसी जमाने में आम होते थे, आजकल नहीं है। तो कैसे होते हैं जो खुश रहते हैं लोग, उनकी क्या हैबिट्स होती है? पहली हैबिट, उन्होंने मन में ठान लिया होता है, पक्का निश्चय कर लिया होता है, कुछ भी हो जाए मैं उदास नहीं होऊंगा, मैं खुशी को नहीं छोड़ूंगा। पहली हैबिट होती है। और दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमारी खुशी तब गायब हुई है आज, क्योंकि आज दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है दूसरा बदले। सारी कमियां दूसरों में हैं वो बिल्कुल ठीक है, जब तक ये दृष्टिकोण चेंज नहीं होगा तब तक खुशी नहीं आएगी। और हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि हैप्पीनेस इज नॉट टुमारो, इट इज ऑन टुडे, अभी है। हम पोस्टपोन करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, मेरे साथ ये हो जाए तो मैं खुश रहूं। एक स्टूडेंट समझता है मेरी एडमिशन हो जाए तो मैं खुश रहूंगा, एडमिशन भी होगी, मेरी अब जॉब लग जाए तब मैं शायद खुश रहूंगा, जॉब भी लगी, अब मेरी मैरिज हो जाए तो हैप्पीनेस आएगी, मैरिज भी होगी, अब शायद बच्चे हो जाए तो हैप्पीनेस आए। इस तरह वो वेट करता रहता है। बच्चे अब छोटे हैं ना, बहुत तंग करते हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे ना मैं ठीक ढंग से रह सकूंगा। उसके बाद उनका भी वही सिस्टम जो हमारा चला, पढ़ना, जॉब, मैरिज। फिर हम सोचते हैं मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा ना, बहुत काम है ऑफिस में, एक बार रिटायरमेंट हो जाऊं उसके बाद मैं हैप्पी रहूंगा। इस तरह जिंदगी बीत जाती है और हम खुशी से दूर रहते हैं। इस खुशी कल नहीं है, अभी है। अगर मैं अभी खुश रह सकता हूं, दैट मीन्स कल भी खुश रह सकता हूं। हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ए जर्नी, ये यात्रा है। ये वही नहीं है कि किसी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए तो आप खुश रहेंगे, नहीं तो खुश नहीं रहेंगे। ये जर्नी, जब आपकी यात्रा चल रही है तभी से आपने खुश रहना है। अब जब लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं? खुशी का सिंबल जो आप भी बीच बीच में कर रहे हैं, ताली बजाते हैं। तो जोरदार एक बार ताली बजाइए। अब आपको एक नए तरीके से ताली बजाना सिखाएंगे। आप कभी मैरिज में गए हो, किसी की शादी हो रही होती है, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा खुश होता है। वो जोर जोर से बजा रहा होता है, बैंड वाला ढोल जो बजाता है, ढोली, बहुत खुशी से बजा रहा होता है। क्योंकि दूल्हे को फिक्र होता है कि दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, दुल्हन को फिक्र होता है कि दूल्हा गोरा है या काला है, सास कैसी होगी, हर कोई फिक्र में है। केवल एक व्यक्ति बड़ा खुश है क्योंकि उसे पता है कि मेरी 5100 में बात हुई थी और मेरे को 5100 पक्का मिलना ही है, इसलिए वो बड़ी खुशी से बैंड बजाता है। तो वैसे ही आपने अब बैंड बजाना है तालियों के रूप में। अगर आप खड़े हो जाएं तो आपकी थोड़ी सी नींद भी गायब हो जाएगी और हम एंजॉय भी कर सकते हैं। अब आपने एक स्पेशल तरीके से ताली बजानी है। जैसे वो बैंड बजाता है ना, पहले इधर बजाता है, फिर इधर वाले का बजाता है, फिर इधर बजाता है, तो आपने क्या करना, मैं कहूंगा 1 2, फिर 3 4 5 ऊपर तक जाके आपने ताली बजानी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2। थैंक यू थैंक यू। बाकी तालियां आप कमरे में जाके बजा लेना। तो रोज खुशी से तालियां बजाओ और सदा खुश रहो। सेकंड हैबिट, जो खुश रहते हैं लोग उनकी क्या होती है? दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो कुछ जिंदगी में होता है उनके साथ, चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, वो उसको खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। किसी भी सर्कमस्टांसिस को, कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। उससे क्या है कि उनकी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाती है। आज क्या है, हमारी लाइफ स्ट्रगल बन गई है, एक वार रूम बन गई है। 24 घंटे मन में द्वंद, ये करूं वो करूं क्या करूं, लेकिन हमें क्या करना है, जो कुछ हो रहा है उसे परमात्म देन समझ के स्वीकार करना है। क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, हमें इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना है। एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दूंगा मैं। 2001 में भूकंप आया कच्छ में, 26 जनवरी 2001 आपको याद हो, सवेरे के टाइम भूकंप आया था। तो वहां सेवाओं के अनेक प्रोजेक्ट चलते थे, हमारी संस्था के भाई बहने भी वहां सेवाओं पे जाते थे। तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज उनके साथ मदद करता है, गांव में जो सेवा का कार्य चल रहा था। तो भाइयों ने सोचा क्यों ना इसका परिचय लिया जाए कि आप कौन हैं। उससे पूछा गया तो वो कहता है कि जिस दिन भूकंप आया मेरा पास में एक गांव था, मैं खेतों में काम करने गया हुआ था, सारे के सारे मेरे 3 बेटे और 15 फैमिली मेंबर्स घर में थे, उन्होंने आना था और मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाना था, मैं पहले चला गया था। इतने में भूकंप आया और सारा का सारा घर गिर गया और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स मर गए। तो हमारे भाई बड़े ध्यान से उसको देखते हैं और पूछते हैं कि जब आपको पता था कि आपका सब कुछ तबाह हो गया अभी अभी ताजा ताजा और आप यहां सेवा कर रहे हो, तो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? जो मेरे साथ हुआ वो मेरे पूर्व के कर्मों का फल था, वो किसी पाप कर्म का फल था जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं आगे के लिए पुण्य जमा करना चाहता हूं इसलिए सेवा कर रहा हूं। उस वो व्यक्ति रो नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, किस्मत को कोस नहीं रहा था, भगवान को नहीं कह रहा था, उसने जो हुआ उसको स्वीकार किया। ये एटीट्यूड चाहिए। इसके लिए देखो, इस व्यक्ति की भी लाइफ आप देख लो। असली स्टोरी है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया 1982 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक था। लेकिन उसकी क्या खासियत थी कि जब वो पैदा हुआ ना टांगे थी ना बाजुएं थी। आप उसके मां बाप का और उस बच्चे के जीवन में कितना संघर्ष रहा होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे वो खाता पीता पढ़ता चलता क्या क्या करता होगा, कितनी पेन सोसाइटी से और उसको अपनी बॉडी की तरफ से मिली होगी और उसके फैमिली मेंबर्स को मिली होगी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं उस कहानी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने चैलेंज को स्वीकार किया और आज वो व्यक्ति क्या है, ही इज द बैचलर ऑफ द कॉमर्स, ही इज ए वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और कॉरपोरेट सेक्टर में जाके अनेक लेक्चर्स देता है और एक अच्छी किताब भी लिख रहा है। क्या किताब लिख रहा है, उसका टाइटल होगा नो आर्म्स नो लेग्स नो वरीज। ना हाथ है ना पैर है ना चिंता है। कितना सुंदर दृष्टिकोण उस निक का। वो कुछ साल पहले बॉम्बे में भी आया था। उसने ये नहीं कहा इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग गॉड व्हाई मी, ही सेज गॉड इज यूजिंग मी जस्ट द वे आई एम एंड इन द वेज अदर कांट बी यूज्ड। भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये नहीं उसने सोचा। ये सोचा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया और जो मुझे दे रहा है मुझे यूज कर रहा है, मेरा भी कुछ इस्तेमाल हो रहा है और दूसरों को वैसे इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। आगे कहता है आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट विटनेस ऑफ गॉड्स लव एंड होप। विटनेस, गवाह बनना चाहता हूं भगवान की होप का, आशा का और उसके प्यार का। नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड। जिंदगी में किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए आप उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को समझिए। रहस्य को समझा, खुशी गायब नहीं हो सकती। थर्ड हैबिट ऑफ हाईली हैप्पी पीपल, वो नीड जोन में रहते हैं, ग्रीड में नहीं जाते, लालच में नहीं जाते, लोभ और लाभ के अंतर को जानते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंसी, इट इज ए डिसीजन। हैप्पीनेस किसी चीज के ऊपर निर्भर होने का नाम नहीं है। ये चीज आए ये मेरे पास हो, ये चीजें मेरे पास हो तो मैं खुश रहूं। मोर द पोजेशंस मोर द कॉम्प्लिकेशंस एंड मोर द ट्रबल्स। जिसके पास कुछ नहीं है वो बेफिक्र बादशाह है, बिन कौड़ी बादशाह है। हम कहते हैं बेगमपुर का बादशाह है। जिसके पास सब कुछ है उसको तो 24 घंटे उसका ही फिक्र लगा रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। संतुष्टता चाहिए, लोभ और लाभ के अंतर को समझने के लिए चाहिए संतुष्टता। संतुष्टता सबसे बड़ी प्राप्ति है। संतोष धन जब जीवन में आ जाता है उसके पास सब कुछ आ जाता है, क्योंकि संतुष्टता ही सर्व गुणों की खान है, प्रसन्नता उसकी पहचान है। अनेक अच्छी अच्छी बातें संतों ने कही, कितने प्रकार के धन हैं, गो धन गज धन रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूली समान। मिट्टी है सारे धन, कुछ भी नहीं है। संतुष्टता जीवन में आ जाए, जिसके पास कंटेंटमेंट है वही है रिचेस्ट, सबसे ज्यादा रिचेस्ट वही है। चाह गई चिंता मरी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह। वो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसकी इच्छा है चाहिए चाहिए, मेरे को ये मिले वो मिले, ही इज अ बैगर। चाहे उसका बैंक बैलेंस अरबों रुपए का है, लेकिन जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो बैगर है, और जो संतुष्ट है ही इज लाइक ए प्रिंस। देखना क्यों आगे करना। चौथी हैबिट, वो लोग खुद ही जीत नहीं पाते, खुद ही सब कामयाबी की ओर नहीं बढ़ते, दूसरों की भी मदद करते हैं ताकि दूसरे भी साथ में कामयाबी को पाएं। दूसरों की भी उनकी हेल्पिंग नेचर, सहयोग भावना, सब आगे बढ़े। केवल मैं लेग पुलिंग करके आगे बढ़ जाऊं वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रहेगा। खुश वो रहेगा जो खुद भी आगे बढ़ेगा, दो चार अपने साथ और आगे बढ़ाएगा। दिस इज द फोर्थ हैबिट। फिफ्थ हैबिट, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग दे मेक कंप्लीमेंट्स, शिकायतें नहीं करते हो, शिकवे नहीं करते, शुक्रिया करते हैं, जो मिला उसी में खुश। एक गिलास पानी का किसी को दिया, आधा गिलास भरा था, नाराज हो गया कि आधा गिलास खाली दिया मुझे, और एक था उसने सोचा कि आधा भरा हुआ दिया है, पहले मैं इसको पी लूं दोबारा मांग लूंगा। ही एक कंप्लेन कर रहा था, एक कंप्लीमेंट कर रहा था। तो कंप्लीमेंट्स, दूसरों की अच्छाई, जैसे कल कह रहे थे ना, दूसरों को खुशी देने का तरीका है उनको कंप्लीमेंट्स दो, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े भाग्यशाली आत्मा हैं, यू आर वेरी लकी, वो खुश हो जाएगा। उसकी कमियां बता दो, नाराज हो जाएगा। इसलिए किसी की कमियां ना बताओ, बताओ तो बताओ उसकी अच्छाइयां बताओ। दिस इज द मेथड टू गिव हैप्पीनेस टू अदर्स, कंप्लीमेंट्स। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीवन, जिसको भी देखो उसकी अच्छाइयां देखो। हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं तो बुराइयां भी हैं। 100% परफेक्ट कोई नहीं है, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी हिटलर टाइप का भी व्यक्ति होगा उसमें भी एक ना एक अच्छाई जरूर होगी। और हमने अपने मन को डस्टबिन नहीं बनाना है, चारों तरफ का कूड़ा इकट्ठा करके, सब तरफ की बुराई इकट्ठे करके, ये ऐसा है वो ऐसा है, हमारा मन क्या बन गया, डस्टबिन। नहीं, हमें अपने मन की सफाई करनी है और सबके गुणग्राही नेचर बनानी है, गुणों का चोर बनना है। जो हम देखते हैं वही सोचते हैं, वही वर्णन करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। किसी की बुराई देखी, धीरे धीरे वो बुराई आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। दूसरों की कमी कमजोरी आपको कमजोर बना देगी। इसलिए आज से संकल्प लो कि हमें दूसरों के गुण ही देखने हैं और अपने भी गुण देखने हैं। अपने आप को भी कम नहीं आंकना है, कई लोग अपने को कम समझते हैं। हम भी भगवान के बच्चे हैं, दूसरा भी भगवान का बच्चा है, सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। यू आर ओके, आई एम ओके, दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड। सबको अच्छी नजर से देखना है। 7 habit ऑफ हाईली हैप्पी पीपल, वो कभी किसी के साथ कंपेरिजन, तुलना नहीं करते अपने रोल को, अपनी अचीवमेंट्स को। जो कुछ उन्हें मिला है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, परमात्म देन समझकर उसको स्वीकार करते हैं, और दूसरे के पार्ट के साथ, दूसरे के रोल के साथ तुलना नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति की रोल अलग अलग है। सारे ड्रामा के एक्टर का रोल एक जैसा नहीं हो सकता। कोई हीरो होगा, कोई विलन होगा, कोई सिंगर होगा, सबका अपना अपना रोल है। तो हम दूसरों के साथ कभी कंपैरिजन ना करें। यहां बीके बहने बहुत सुंदर कहानी सुनाती हैं कि इस दुनिया में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। 5 उंगलियों की आपस में लड़ाई होगी। 5 उंगलियों में से पहली उंगली कहे ये वाली कि मैं बड़ी। क्यों बड़ी? क्योंकि मैंने गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था, श्री कृष्ण ने उठाया था, किस उंगली पे उठाया था, मेरे पे तो उठाया था, इसलिए मैं बड़ी। नंबर 2 वाली कहे मैं बड़ी। क्यों बड़ी? क्योंकि जब तिलक लगाते हैं किसी को, युद्ध भूमि में भेजते हैं, तो मेरा इस्तेमाल करते हैं। तीसरी कहे सांच को आंच क्या, देखने में बड़ी हूं इसलिए मैं बड़ी हूं। चौथी कहे धर्म पिताओं ने परमात्मा की ओर इशारा किस उंगली से किया, गॉड इज वन, इसी उंगली से किया, मैं बड़ा हूं। इसने सोचा ये तो काम खराब है, मैं, मेरी तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। कहता मैं बड़ा हूं। कहते तुम कैसे बड़े हो भाई, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो किससे काम लगाते हैं। आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, कहते लगाओ अंगूठा तब अटेंडेंस लगेगी आपकी। तो आजकल तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बड़ा हूं। अब 4-5 चली गई जज के पास। जज कहता है अभी कौन बड़ा, कैसे फैसला करें। कहते बूंदी का थाल रख दो आगे, बनाओ लड्डू। अब लड्डू बने ना अकेले अकेले, जब सारे मिलके काम करें तो लड्डू बने। इसलिए हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है। जहां सुई काम आती है वहां सुई काम आएगी, जहां तलवार काम आती है वहां तलवार काम आती है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता, कोई तुलना की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपनी तुलना दूसरे के साथ करते हैं, दैट मीन्स हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारा पार्ट उनसे अलग है। मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच में सबसे सुंदर कलाकार हूं, मेरा पार्ट सबसे अलग है, उनका अलग है, मुझे तुलना नहीं करनी है। 8th habit, एंजॉय ईच एंड एवरी एक्शन यू परफॉर्म। जो कुछ आप करते हैं उसको एंजॉय करो, स्ट्रगल नहीं बनाओ। आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग को एंजॉय करो। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग को एंजॉय करो। ऑफिस की जॉब है, आप उसको एंजॉय करो। दुनिया में आज उल्टा होता है, लोगों को लगता है दूसरे की जॉब अच्छी है, मैं बहुत मुसीबत में हूं। नहीं, जो काम आपको मिला है उसको दिल से करो, एंजॉय करो उसको। बर्डन नहीं सोचो कि मैं कहां फंस गया इस नौकरी में, कहां चला गया, देखो। नहीं, आप लाइन में खड़े हैं बैंक में, आप परेशान ना हो, बड़ी लंबी लाइन है, क्या करूं। नहीं, उसका एंजॉय करो, जो कुछ हो जाए। आप ज्ञान सरोवर में आए, रास्ते में मान लो कोई जा रहा है, पैर फिसल गया, मोच आ गई, वो सोचेगा देखो मेरी खराब किस्मत, भगवान के घर में आया, यहां भी किस्मत मेरी बदकिस्मती साथ नहीं छोड़ रही। एक एटीट्यूड ये है, एक है नहीं, मुझे एंजॉय करना है। भगवान ने कहा है जो कुछ हो जाए, मर भी जाओ तब भी एंजॉय करो, मरो भी एंजॉय करते हुए। ऐसा एटीट्यूड चाहिए। दिस इज द एर्थ हैबिट ऑफ हाईली हैप्पी पीपल। नाइन्थ, सॉल्यूशन पर्सनैलिटी, नॉट द प्रॉब्लम पर्सनैलिटी। सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, हर चीज में सॉल्यूशन है। समस्याएं पैदा नहीं करनी है, समस्याओं का समाधान ढूंढना है। और समस्याएं क्या है, ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है, प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट क्रिएशन ऑफ वीक एंड नेगेटिव माइंड। हमारे कमजोर मन की रचना है समस्याएं। जिसका मन पावरफुल है वो समस्याओं को समस्याएं नहीं, चैलेंजेस मानता है, चुनौतियां मानता है, और चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। और कमजोर व्यक्ति घबरा जाता है। इसलिए हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है समस्याओं के प्रति, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। एंड आई एम मोर पावरफुल देन प्रॉब्लम्स बिकॉज गॉड इज विद मी। अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने की आदत है ना जो हमारी, कोई भी बात हो जाए हम सोचना शुरू कर देते हैं। अब लाइट चली जाए तो आपके संकल्प चलने लग जाएंगे, कहां लाइट चली गई, पता नहीं क्यों चली गई। हम जो हर घटना हर बात में सोचने लग जाते हैं और उसकी पीएचडी करने लग जाते हैं। दादी जी भी कह रहे थे क्या क्यों कैसे, ये जो करता हो कौवा होता है। और यही हम सारा दिन करते हैं, व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ, ये पांच क्वेश्चन मार्क्स ओवर थिंकिंग का कारण है। हमें अपने आप से पूछना है, क्या जो मैं सोच रहा हूं उसकी मुझे जरूरत है? जो मैं सोच रहा हूं उसके सोचे बिना काम नहीं चल सकता। क्या मैं दुनिया का जनरल मैनेजर लगा हूं कि सबके बारे में सोचता रहूं? जो दुनिया का सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो ऊपर निश्चिंत होकर बैठा है, वो सोचता ही नहीं, और हम यहां सोच ही जा रहे हैं। इसके लिए कहा एक फार्मूला याद रखो, ABCD फार्मूला। जो आप काम करते हैं उसको चार हिस्सों में बांट लो। कुछ काम आपके ऐसे होंगे जो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, ए फॉर अवॉइड। हर घटना पर हर बात पे प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, आप अवॉइड करो उसकी और सोचो ही ना। कुछ बातों को आपको बाईपास करना है। सपोज प्रॉब्लम वहां है, आप उधर जाओ ही ना, आप इधर से निकल जाओ, बाईपास रोड की तरह। कुछ चीजों को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, बिल्कुल एक सिरे से कैंसिल, क्रॉस है ही नहीं उसका कोई रूल। और चौथी चीज है, डू योर मेन वर्क विद फुल डिटर्मिनेशन, विद फुल विल पावर, विद होप ऑफ सक्सेस। जो आपको काम मिला है उसको पूरे दिल के साथ करो, एंड यू विल गेट द सक्सेस एंड हैप्पीनेस। दिस इज योर 10th हैबिट ऑफ हाईली हैप्पी पीपल। अब आप अपने में भी देखते रहना कि इनमें से कितनी हैबिट्स हमारे अंदर हैं, उतनी उसी प्रोपोर्शनल में आपकी हैप्पीनेस होगी। 11th प्रिंसिपल, स्टार्ट द डे विद पॉजिटिव थॉट्स। अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए। कल आपको सवेरे 4 बजे यहां अमृत वेले आना है। क्यों आपको बुलाया गया दादी जी के द्वारा? क्योंकि अमृत वेले जब अच्छे विचार उठते ही आप अच्छे विचार लाएंगे, वैसा आपका जीवन बन जाएगा। उठते ही पहले 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स हैं, क्योंकि उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अवेकन एक्टिव होता है। उस वक्त जो आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसलिए उस वक्त अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए। परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है, ऐसे ऐसे थॉट्स उस वक्त लाइए। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। भगवान का हमें थैंक्स करना है, बी थैंकफुल टू गॉड। भगवान से शिकवे और शिकायतें नहीं करनी है, भगवान को शुक्रिया करना है, जो कुछ भगवान ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रह के उसका थैंक्स करना है, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है। एक छोटी सी बात आपको हंसने की बताता हूं, क्योंकि मेरा प्राइम ड्यूटी है कि आपकी हैप्पीनेस कायम रहे, लेक्चर सुनते सुनते आपकी हैप्पीनेस गायब ना हो, ये मेरी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दो बच्चे बहुत शरारती थे, मां बाप की नाक में दम कर रखा था, एक की उम्र थी 8 साल, एक की उम्र थी 10 साल। इतने शरारती कि शहर में कोई भी घटना हो उनका नाम जुड़ जाता था कि इनका कहीं ना कहीं हाथ है। इतने बच्चे बदनाम हो रखे थे, मां बाप परेशान। इतने में एक पादरी शहर में आता है, तो पादरी कहता है, वो बच्चे मां बाप पादरी के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप कुछ सॉल्यूशन कीजिए। पादरी कहता है कोई बात नहीं, आप एक एक बच्चे को मेरे पास भेजिए मेरे घर में। तो पहला बच्चा जाता है, छोटे वाला चला जाता है, तो पादरी उसको बंद कमरे में बैठा देता है और कहता है वेयर इज गॉड, तो भगवान कहां है। वो चुप रहा, उसने थोड़े और जोर से बोला वेयर इज गॉड, वो फिर चुप रहा। फिर उसने उसके कान हिलाए, कहता सुनाई नहीं देता वेयर इज गॉड। बच्चा डर गया, बच्चा वहां से भागा, इतनी स्पीड से भागा उसके घर से, और अपने घर आ जाता है और फटाफट दरवाजा बंद कर देता है, लॉक लगा देता है और घर आके चुपचाप बैठ जाता है। तो उसका बड़ा भाई पूछता है, अरे भाई हुआ क्या, तू वहां गए थे क्यों इतने घबराए हुए हो, क्या हुआ। वो कहता है इस बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कहता क्या हुआ, कहता इस बार तो भगवान गायब हो गया है और वो कहते हैं कि आपका हाथ है। उनको शक हमारे ऊपर है। तो भगवान वैसे गायब नहीं हुआ है, भगवान कल के आपको सवेरे के लेसन में राजयोग शिविर में भगवान का परिचय देंगे कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, क्या उसका परिचय है, कैसे उसे उस गायब हुए भगवान से आप मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लिविंग, 5 ऐसे नियम, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेकिन समझ लिए तो जिंदगी बदल सकती है। ये ऐसे नियम हैं विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ, विच कोरिलेट माइंड विद मैटर, मैन विद द वर्ल्ड। दुनिया की चीजें जिसे मैटर कहते हैं, एलिमेंट्स जितनी भी चीजें हैं उनको आपके मन से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि खुशी किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए या मन को चाहिए। जब खुशी मन को चाहिए तो मन के 5 नियम समझने बहुत जरूरी हैं। पहला प्रिंसिपल है नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर इटसेल्फ, दुनिया की कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है, जो भी चीजें नेचर ने बनाई हैं वो दूसरों के सुख के लिए बनी हैं। जिस सोफा सेट पे कुर्सी पे आप बैठे हैं, जिस पेन से कुछ लोग लिख रहे हैं, जिस माइक से मैं बोल रहा हूं, जिस लैपटॉप को मैं प्रयोग में ला रहा हूं, क्या ये सारी चीजें अपने लिए बनी हैं, ये दूसरे के सुख के लिए बनी है, दूसरों के लिए बनी है। नदी अपना पानी खुद पीती है या दूसरों को देती है, पेड़ अपना फल खुद खाते हैं या दूसरों को देते हैं। व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस, द लेसन विच फॉलोज ऑफ सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, हमें दूसरों को देते जाना है, गिव गिव गिव, देते जाना है, दूसरा दे या ना दे। हम भिखारी बने हैं आज, दूसरा मुझे प्यार करे, दूसरा मुझे कॉपरेशन करे, दूसरा मुझे खुशी दे, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है मेरा खुशी का, वो चाहे तो मैं खुश, वो चाहे तो मैं उदास। ऐसी जिंदगी नहीं, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी खुशी के इंचार्ज खुद बनना है, दूसरों को देना है, देंगे तो कई गुना वो हमें वापस आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यू कांट एक्चुअली ओन एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट, वट एवर वी यूज इन द लाइफ, जो कुछ हम प्रयोग में लाते हैं वी उसके हम ओनर नहीं बन सकते, हम उसको ट्रस्टी के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के हम मालिक नहीं बन सकते। क्यों नहीं मालिक बन सकते, आप कहेंगे मैंने अपना मकान खुद खरीदा, रजिस्ट्री कराई कोर्ट में जाके, कार मैंने खुद खरीदी है, क्या मैं इसका मालिक नहीं हूं। नहीं, वो चीज हमें इस्तेमाल करने के लिए मिली है। आप किसी होटल में जाइए, होटल में 5 दिन के लिए कमरा बुक करा लीजिए, तो पांच दिन में आपका वही एड्रेस, वही टेलीफोन नंबर, वही सोफा सेट, हर चीज आपको मिली है वहां, लेकिन किसके लिए मिली है? केवल यूज करने के लिए। आप उसके मालिक नहीं है। उसी तरह एक जिंदगी क्या है? एक यात्रा है, एक सराय है, एक मुसाफिर खाना है। वो पांच दिन की बात है, ये सौ साल की बात है, लेकिन बात दोनों एक है। यहां हर चीज हमें प्रयोग करने के लिए मिली है, मालिक बनने के लिए नहीं। मालिक बनने का क्या नुकसान है? जब हम मालिक बनते हैं तो मालिक बनने से अटैचमेंट पैदा होती है, और अटैचमेंट जब पैदा होती है तो उससे ग्रीड पैदा होती है। फिर ग्रीड को पूरा करने के लिए हम रॉन्गफुल एक्शंस करेंगे, कोई अलग अनेक तरीके अपनाएंगे, और लास्ट में हमें दुख मिलेगा। एग्जाम्पल, आप किसी होटल में ठहरे हैं, साथ वाले कमरे में कोई व्यक्ति है जो जोर से किल मार रहा है दीवार पे, लेकिन आप कोई फिक्र नहीं करते, आप कहेंगे मेरा क्या घट रहा है, आप मजे से सोए हैं अपने कमरे में। अब आपने अपने घर में आ जाइए, आपने अपना दो कमरे किसी किरायेदार को दे रखे हैं, और किरायेदार जोर जोर से दीवार तोड़ रहा है, तो आपको क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे मेरे दिल पे किल मार रहा है, क्योंकि वो आपका मकान है, आपकी अटैचमेंट है उसके साथ, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। जहां ओनरशिप है वो आपको दुख देगी चीज। और आपने सोच लिया कि ये सब होटल है, ट्रस्टी हैं हम, तो इंस्ट्रूमेंट हैं, सब भगवान का दिया हुआ है, बस चिंता करने की बात नहीं है। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल, ओनरशिप के बहुत नुकसान है। हमें हर चीज डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर यूज करनी है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें टू मच इन्वॉल्व नहीं होता, वो उसमें उसके रिजल्ट उसको इफेक्ट नहीं करता, वो डिटैच होकर काम करता है। मरीज बच जाए तो लड्डू नहीं बांटता, मरीज मर जाए तो रोने नहीं लगता। कैशियर बैंक में होता है, कितने करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन उसके इफेक्ट में नहीं आता। ऐसी जिंदगी हमें जीनी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मेयर पोजेशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस। चीजों को इकट्ठा कर लेने से हैप्पीनेस नहीं मिलती। आप रिश्वत लेके, भ्रष्टाचार से, चोरी से, हेरा फेरी से पैसा कमा लीजिए, बहुत बड़ा अमीर बन जाइए, लोग कहेंगे ये नगर सेठ है, हमारे शहर के बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो चीज आपको अंदर से खुशी दे रही है या सुख दे रही है, ये किसी और बात पर निर्भर करता है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑल दीज थिंग्स कैन बी सोर्स ऑफ सोरो एंड एक्सट्रीम सोरो ऑल्सो। जितनी भी चीजें हैं, आपकी बॉडी है, ये बॉडी सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। जब तक ठीक चलती है तो सुख है, आज बीमार पड़ जाए तो यही बॉडी दुख देती है। आपका बेटा है, बेटा अगर लेनदार है तो दुख देगा, अगर देनदार है तो सुख देगा। हर चीज ऐसी है। एक व्यक्ति है, उसको या स्टूडेंट है, स्कूल में जाके फेल हो गया, या किसी का रिश्तेदार मर गया, या कोई अपनी जॉब में गया, जॉब में जब गया तो वहां उसको सस्पेंड कर दिया गया। आज वो वापस आ रहा है घर, सस्पेंड हुआ है, सोच रहा है मन में उदास उदास, क्या कहूंगा घर जाके, कैसे गुजारा चलेगा, बहुत परेशान है। रास्ते में एक म्यूजिक पार्टी चल रही है, बैंड बज रहे हैं, लाइटें जगी हुई हैं, वो म्यूजिक पार्टी उसको खुशी देगी या उसकी उदासी को और बढ़ाएगी? उसकी उदासी को और बढ़ाएगी, क्योंकि वो पहले उदास है, आज वो खुशी की चीज भी उसकी उदासी को बढ़ाएगी। और एक आदमी है नया नया मेरी तरह, जॉब उसकी लगी है, जॉब लग गई, रास्ते से जा रहा था, किसी को टक्कर मार दी, वो कहता देखते नहीं हो, ध्यान से चला करो, वो कहेगा सॉरी सॉरी सॉरी, खुश है तो सॉरी बोल लेगा, उदास होगा तो और लड़ने लग जाएगा। इसका मतलब जो आपके अंदर है, बाहर की चीजें उसको बढ़ाती हैं। आपके अंदर अगर गन्ना है तो गन्ने को बढ़ाएंगी, आपके अंदर अगर मिर्ची है तो मिर्ची को बढ़ाएंगी। धरती भी ऐसा करती है, जैसा बीज उसको बढ़ाती है। हमारे अंदर क्या है? बाहर की चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए, अच्छा सा बंगला बना लीजिए, आलीशान मकान, दुकान, पकवान सब अच्छा कर लीजिए, लेकिन अंदर जब खराबी है तो वो सारी चीजें आपको दुख ही देंगी। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर ठीक है तो भी आपको हर चीज से खुशी मिलेगी। तत्व आपकी खुशी या दुख को बढ़ाते या कम कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। जो आपके अंदर है वैसा ही उसको बनाएंगे। एक सब्जी है, बाहर से ठीक है, अंदर उसके कीड़ा लगा हुआ है। आपने मैंगो खरीदा, बाहर से ठीक लगता है, अंदर से खराब है। वैसी ही जिंदगी आज हमारी है। बाहर से आपको लगेगा ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, देखो जी इसका तो 28 मंजिली मकान बन गया है, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी देखोगे तो पता चलेगा कि लोगों का अंदर से कितना खालीपन है। भाई भाई के मुकदमे चले हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, सेहत ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, व्हाट इज द यूज। इसलिए लेसन ये मिलता है कि हमें अपने अंदर के संस्कारों को, क्वालिटीज को चेंज करना होगा, मन की बुराइयों को दूर करना होगा। जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक खुशी आ ही नहीं सकती। चौथा रूल है, फॉर्चून एंड हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन अकोमुलेटिव स्टॉक ऑफ गुड कर्मा। खुशी आपके पुण्य की पूंजी पर निर्भर करती है। अगर आपके खाते में पुण्य की पूंजी जमा है तो आप खुश रहेंगे, अगर पाप का घड़ा भरा हुआ है तो आपको उस चीज से दुख मिलेगा। आप कितने भी ऊपर चले जाओ, बहुत अच्छे भी बन जाओ, यहां एक छोटा सा बनाया है बोट, लग्जरी बोट, अमेरिका का एग्जाम्पल है, एक शहर वहां समुद्र के किनारे है जिसमें वहां के बड़े धनाढ्य लोगों के बोट शिप, जिसमें हर फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, कई कुछ है, वो खड़े रहते। अब आप देखिए, लेकिन उनमें डस्ट जमी रहती है, वो वहां के धनाढ्य लोगों के स्टेटस सिंबल है, उनको रखने पड़ते हैं, लेकिन वो इतने व्यस्त लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है कि उस शिप में जाके रहें, लिए हुए हैं, पड़े हैं उनके ऊपर, उसकी पार्किंग फी भी देते हैं, कभी कभी उनके रिश्तेदार कभी आ जाते होगा, किसी को स्लिप देके भेज देते होंगे कि आप ठहर लो। आमतौर पर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं है। भाग्य भी बनता है आपके कर्मों से। जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, पुण्य की पूंजी जमा नहीं होगी, चीज होते हुए भी आपको सुख नहीं देगी, वो चीज पड़ी हुई है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति था, फैक्ट्री का मैनेजर, रात को आ रहा था, आते आते लेट हो गया तो रास्ते पैदल ही आ गया। देखा कई लोग उसके फैक्ट्री के लोग सोए हुए हैं, उनकी झुंगी झोंपड़ियां थी, वहां चूल्हा जल रहा है, सोए नहीं है, चूल्हा जल रहा है और डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। उसने सोचा मेरे इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है, फिर भी ये डांस कर रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ है, मैं तो आज इनकी तरह ना डांस कर सकता हूं ना गा सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो भाग्य चाहिए खुश रहने के लिए, जिसका भाग्य साथ देगा। भाग्य बनता है आपके कर्मों से। लास्ट प्रिंसिपल, मैटर इज गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। मैटर को, जितनी भी चीजें हैं, साधन हैं, उनको अगर आप अधिकारी बन के इस्तेमाल करो वो आपको सुख देंगी, उनके आप गुलाम बन गए वो आपको दुख देंगी। साइंस की जितनी भी चीजें हमारे पास है उनके हम गुलाम बनते जा रहे हैं। आज बिजली चली जाए गर्मियों के दिनों में, क्या हालत हमारी होगी? वो गुलामी का चिन्ह है, हमें गुलाम नहीं मालिक बनकर इस्तेमाल करना है। एक घुड़सवार, घोड़ा उसके ऊपर बैठ जाए, मान लो घुड़सवार के ऊपर, तो क्या हालत होगी? उसी तरह माइंड जो हमारा सर्वेंट है वही मालिक बन जाए, सब कुछ उल्टा फुलटा हो जाएगा। बहुत से राजाओं के मंत्री, राजा इतने कमजोर हो गए कि मंत्री उसे पावरफुल हो गए, उनका तख्ता पलट दिया गया। तो हमें वैसा नहीं बनना है, हमें मालिक बनकर हर चीज को यूज करना है। और एक लास्ट की इंपॉर्टेंट एक दो बातें और बताऊं, खुशी का आधार आपके विचार हैं। खुशी कहीं नहीं है, खुशी है आपके विचारों में। आपके विचार अच्छे हैं, आप खुश है, मन रूपी चक्की में जिस तरह के विचार आपके अंदर चलते हैं वैसा ही महसूसता आपको होती है। आप चक्की में नमक पीसिए, नमक बाहर आएगा, चीनी पीसिए, चीनी बाहर आएगी। अगर आप मन में अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार, दूसरों को सुख देने के, खुशी के, पवित्रता के, त्याग तपस्या दया भावना के लाओगे, खुशी मिलेगी। और मन में लाओ आप कष्ट में बीती हुई घड़ियों का चिंतन करो, नफरत, गुस्सा, दुख, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, वो विचार लाओ तो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए हमें अपने मन में पॉजिटिव विचार, अपने मन को ज्ञान रूपी रत्नों से भरपूर करना है। आप ज्ञान सरोवर में आए हैं, कितना ज्ञान आपके ऊपर बरस रहा है, ये आप अपने मन में बैठा लीजिए इन ज्ञान रत्नों को, और इनके बारे में चिंतन करते रहिए। चर्निंग ऑफ द नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरों को खुशी देते रहिए, खुशी बांटिए, जितने बांटेंगे आपके पास उतनी ही खुशी वापस आएगी। और वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान, हम क्या करते हैं, पास्ट का पोस्टमार्टम करते रहते हैं और फ्यूचर का ऑपरेशन करते रहते हैं। वर्तमान में जीने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो क्या करती है, वो प्लानिंग करती रहती है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, वो भविष्य में जीते हैं। और बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, वो पास्ट में जीते हैं, हमारे टाइम में ऐसा था। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो वर्तमान में जीते हैं, हमें अपना वर्तमान अच्छा बनाना है, वर्तमान अच्छा बन गया तो पास्ट भी अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी। लास्ट में मैं अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा, आपने भारत की एक प्राचीन कहावत सुनी होगी, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। तो आज से आप सब हाथ हिला के संकल्प करेंगे, सभी हाथ हिलाएंगे कि प्राण जाए खुशी ना जाए। आज वचन की बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है हैप्पीनेस की, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। भगवान ने हमें धरती पे भेजा है खुश मिजाज रहने के लिए, मुझे हर हालत में खुश रहना है। खुशी परमात्मा की दी हुई अनुपम सौगात है जिसे मुझे संभाल के रखना है, इच्छाएं पूरी हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, महिमा हो या ग्लानी हो, मेरे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन खुशी मेरे साथ परछाई की तरह हो, मुझे हर हालत में खुश रहना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।